ओम शांति। अवेकनिंग रामा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं माइंड मैटर्स की, एक वो श्रृंखला जिसमें हमने जाना अपने मन के बारे में और मेंटल इलनेसेस के बारे में। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो प्रॉब्लम है डिमेंशिया, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है। लेकिन कब ये बीमारी बन जाती है और कैसे इसको जो है हम संभाल कर रख सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर होती है, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन में कम होने लगती हैं, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो जो डिमेंशिया जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, उससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती हैं।
डिमेंशिया को मैं एक लास्ट स्टेज अगर समझूं, लास्ट स्टेज इन द सेंस कि ये उम्र के आमतौर पे एक खास समय पर आती है और जितनी होती है जिस रूप में आती है उससे पहले ही कई चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जिनको हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। जिस समय हम पैदा होते हैं तो ब्रेन के कुछ सेल्स होते हैं जो धीरे धीरे मैच्योर होने शुरू होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका साइज़ बढ़ता है, उनके आपस में कनेक्शंस बढ़ते हैं, लेकिन नंबर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। और एक उम्र के बाद, मिड ट्वेंटीज थर्टीज़ के बाद, वो कम होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे।
सेल्स
कम होने शुरू हो जाते हैं लेकिन उनके कनेक्शंस बढ़ते रहते हैं। लेकिन इतने बिलियंस ऑफ सेल्स हैं कि थोड़े से कम हो गए फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज़ करें तो हमारे माइंड की अथाह पावर्स हैं याद कर पाने की भी, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाने की भी। और जैसे जैसे समय बीतता है तो हमने जो एक्सपीरियंस से सीखा है, जो हमारी पुरानी मेमोरीज हैं वो नई मेमोरीज़ को एनकोड होने में भी मदद करती हैं। यहाँ पे शायद इम्पॉर्टेंट होगा ये समझना कि मेमोरी जो है वो एक प्रोसेस है, और अगर हम उसे समझ के चलेंगे तो मेमोरी को सशक्त कैसे करें और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम को बाद में आने से कैसे कम कर सकें वो भी समझ में आ जाएगा। पहली स्टेज है अटेंशन, यानी हमने किसी चीज़ को याद रखना है या किसी चीज़ की तरफ हमारा ध्यान गया, वो है अटेंशन। सेकंड है कंसंट्रेशन, उस पर हमने कुछ देर के लिए ध्यान को केंद्रित किया, और ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे पिक्चर देख रहे हैं, चाहे किसी से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा अटेंशन होता है तो चाहे हम कुछ सुन रहे हैं या देख रहे हैं या वैसे महसूस कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन के ऊपर रजिस्टर होती है, और रजिस्टर होने के बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। जैसे आपने मुझे कोई फ़ोन नंबर बताया, मैं कुछ मिनटों के लिए उसे याद रख पाऊँगा, लेकिन अगर मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करूँगा या एक्चुअली एक्शन में नहीं लाऊंगा तो वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद होती है मिड टर्म मेमोरी। जैसे कि हमारे घर में कौन रहते हैं, हमने किसी से कोई बात की, और अगर बार बार की, हम किसी रूट पे रोज़ जाते हैं तो उसके बारे में डिटेल, वो जितनी बार रिपीट होती है और बिना घबराहट के रिपीट होती है, पूरी तरह से उसके लिए हम समय लगाते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं, तो वो धीरे धीरे और पक्की हो जाती है और लास्ट स्टेज पर है जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे परिवार में कौन है, मैं किस जगह रहता हूँ, मेरी जो पढ़ाई है, मैंने जिस तरह का प्रोफेशन किया है, वो धीरे धीरे पक्का होता रहता है। अगर रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं हुई है तो वो हमें याद नहीं रहेगी। और इसीलिए आज तक कई बार ज़्यादा तरह से लोग कहते हैं कि मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का हमने टाइम ही नहीं दिया। अगर हमारा ध्यान चार चीज़ों में जा रहा है तो एक चीज़ के ऊपर ना अटेंशन रही, ना उस पर ध्यान फोकस रहा, ना कंसंट्रेशन रही, ना हमने उसको याद करने की कोशिश की, तो जो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। कई बार हम तीन चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और किसी से सेलफोन पर भी बात कर रहे हैं, तो तीनों चीज़ों में डिवाइड हो गए। कई बार लोग खाना खा चुके होंगे, उन्हें याद नहीं रहेगा कि मैंने कितनी रोटियां खाई थी, या टीवी में क्या प्रोग्राम चल रहा था, या मैंने फ़ोन पे पूरी क्या बात की। तो उसमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम रहती है, अगर सही प्रकार से हमने उस चीज़ को शुरू में याद होने के बाद बार बार रिपीट नहीं किया तो भी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर कुछ डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में जिसकी वजह से ब्रेन की जो केमिस्ट्री है वो पूरी तरह से सशक्त नहीं होती, उसकी वजह से भी ये अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी के जो प्रोसेसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम बहुत एंग्शियस हैं या हम बहुत डिप्रेस्ड हैं या हमारी डाइट नॉर्मल नहीं है या हमें कुछ फिजिकल इलनेसेस हैं, खास तौर पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड की कमी होना, हाइपोथायराइडिज्म या हार्ट की कुछ इलनेसेस हैं जिसमें कि थोड़े थोड़े ब्रेन के अंदर जो हैं वो वहाँ पे गल जाते हैं, जिसको मैक्रोनेरोसिस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेन की जो एनकोडिंग है वो ठीक नहीं होती। उम्र के साथ साथ ये प्रोसेसेस, खास तौर पे अगर हम पूरा ध्यान नहीं रखते, खास तौर पे एक्सरसाइज इसका एक बहुत बड़ा रोल पाया गया है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ती है और जो ब्रेन को ब्लड जाता है वो भी बेटर होता है। तो अगर ये सब चीज़ें हम ध्यान से नहीं करते तो एक उम्र के बाद वो जो क्रिटिकल है उसमें भूलना ज़्यादा हो जाता है, याद होना कम हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भूले फिर याद आ गया, किसी ने याद दिलाया और याद आ गया, तो वो डिमेंशिया नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो लगातार हो रहा है और बढ़ रहा है और हमें याद ही नहीं आ रहा और उसके साथ ही कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम कन्फ्यूज्ड हो गए, हमें नींद नहीं आ रही या हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा, या हम चीज़ों को सही रूप से समझ नहीं पाते, या हम बहुत इरिटेबल हो रहे हैं, या हम चीज़ों को सही तरह से जो पहले करते थे, चाहे पढ़ते थे या एक रेगुलर बातचीत करते थे या जो प्रोफेशन था उसको करते थे या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो एक प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को इकट्ठा मिला के डिमेंशिया, जिसको कि हिंदी में सठियाना कहते थे, बड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन पहले लोगों की एज बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। आपको शायद ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि सिर्फ 60 वर्ष के करीब पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो एवरेज एज लोगों की 32 साल थी।
अच्छा
जी, एवरेज एज, मतलब बहुत से लोग थे जो उससे पहले मर जाते थे, बहुत सारे थे जो कुछ थोड़ा लेट तक चलते थे, लेकिन एवरेज एज 32 साल थी,
बीमारियों के कारण।
लेकिन अब लॉन्गेविटी बढ़ती गई है, भारत पिछले करीबन 10 से 15 वर्षों में 8 साल हमने एवरेज लोगों की एज को ऐड किया है, तो आज वो एवरेज एज 66 से 70 साल है किस अलग अलग जगहों पे भारत में। तो क्योंकि लोग ज़्यादा जी रहे हैं लेकिन ज़्यादा बीमारियों के साथ भी जी रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ जगहों पर स्टिमुलेशन बहुत कम है। अगर लोग ओल्ड एज में अकेले रहें या परिवार साथ में नहीं है या उन्हें डिप्रेशन है या उनको जो दवाइयां ले रहे हैं उसकी वजह से उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो जो पहले 60 साल पे समझा जाता था कि एजेस होंगे, चेंजेस होंगे, वो चेंजेस अब थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन 70 में 75 में कुछ चेंजेस देखने शुरू होते हैं। लेकिन अगर बहुत स्पीड से आए और वो व्यक्ति की ज़िंदगी में, डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करे तो वो डिमेंशिया नाम से प्रॉब्लम।
डॉक्टर साहब, यहाँ एक जो बात दिमाग में आ रही है वो ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो अगर बच्चों में आज हमारे हैं तो इनको ये याददाश्त की बीमारी हो पाना, हो जाना ज़्यादा लगता है कि ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, दिस कैन बी एंड वी नीड टू वर्क फ्रॉम दिस मोमेंट ओनली, या ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है उसके उस प्रॉब्लम?
देखिए, किस प्रकार से हम अपनी मेमोरीज को एनकोड करते हैं वो ऑलमोस्ट एक लाइफ लॉन्ग चीज़ हो जाती है, और अगर शुरू से ही हम मल्टीटास्किंग, जिसको आप जिसकी बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग में हम एक चीज़ के ऊपर तो फोकस हो ही नहीं पा रहे ना, तो वो एनकोडिंग हो ही नहीं पा रही, तो ब्रेन जो है और ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं वो डीप तो जा ही नहीं रहे हैं, और उसी वजह से मेमोरीज जो हैं ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं चीज़ों को याद करने के लिए। तो कंप्यूटर में आपकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर कंप्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन चली जाए या मेरा सेलफोन मुझसे गुम जाए तो शायद 2 या 3 फ़ोन नंबर्स ही हमें याद रहेंगे। हमारे पास याद पहले लोग, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चाहे लिखते थे चाहे उसको बार बार करते थे और कम चीज़ों को करते थे, तो उससे जो मेमोरी की इनकोडिंग है वो बेटर होती थी। अगर हमने वो चीज़ सीखी नहीं है तो समय के साथ साथ बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या टेक्नोलॉजी के ब्रेन की जो मेमोरीज है वो कम होंगी, और बाद में अगर हम उसके ऊपर उतना ही जोर डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे।
तो इसका मतलब यहीं से नींव डलती है हमारी मेमोरी का जो पूरा प्रोसेस है उसकी।
ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम माइंड है, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अगर हम शुरू से ही एक खास तरीके से एनकोडिंग करने का तरीका समझाएंगे तो वही चीज़ बाद में भी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको इसी रूप में यूज़ करेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज के लिए या किसी बाहरी चीज़ की मदद से ही हम उसको कर रहे हैं, तो बाद में जाके जैसे जैसे वो सेल्स की डेथ होनी शुरू होगी या जो बाद में एक खास एज के बाद प्रॉब्लम आएगी तो हम उस चीज़ को उतना अच्छा नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ अगर बचपन से ही शुरुआत हो, और उसके लिए प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं कि उनको कहा जाए कि एक जगह पे बैठ के एक चीज़ को ही पूरी तरह से फोकस करके अटेंड करके, सेम बच्चा बाकी चीज़ों में भागता दौड़ता है लेकिन कार्टून आए तो उसके ऊपर फोकस हो सकता है। तो अगर हम उसे ट्रेन करें या उसकी मदद करें कि वो हर चीज़ के ऊपर बीइंग इन द हेयर एंड नाउ, आज के समय में इस समय में जो चीज़ हो रही है उस पर पूरा फोकस करो, तो ये जो प्रैक्टिस है ये बाद में जाके भी काम आएगी।
व्हाट आर द रियल सिम्टम्स, जब हमें रियलाइज हो जाए कि हमें शायद ये बीमारी हो सकती है, हमारे किसी परिवार वाले को हो सकती है?
पहली चीज़ ये प्रोग्रेसिव होगी, यानी आज हुई कल नहीं हुई ऐसा नहीं है, होनी शुरू हुई तो धीरे धीरे बढ़ेगी। कुछ सिचुएशंस में ये एक्यूट हो सकती है, और अगर एकदम आनी शुरू हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन डैमेज हुई है। उसके लिए इमीडिएटली डॉक्टर की मदद लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्ट्रोक्स होते हैं
जो पता ही नहीं चलता,
जो पता नहीं लगते, या ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कुछ देर के लिए कम हुई, या डायबिटीज़ की वजह से ब्रेन के अंदर कुछ खास ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, या ब्लड प्रेशर की वजह से हुई, या कोई और डिसऑर्डर हुआ, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुई, या वो कोई दवाई ले रहे थे जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो अगर दिनों के अंदर ऐसा हो जाए तो उसमें ऑलमोस्ट सर्टनली ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए जितना जल्दी मदद लेंगे पहचान कर उतना जल्दी वो ठीक होंगे।
न्यूरोसाइंटिस्ट के पास किसके पास जाना ज़रूरी है?
इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोफिजिशियन जिसको कहा जाता है, और साथ में अगर कुछ बिहेवियरल चेंजेस हैं, यानी वो व्यक्ति एकदम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया, उसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, घर कहाँ है, किस कमरे में है, टाइम क्या हुआ है, ये चीज़ें भी अगर भूलने लगे तो ये एक तरह से इमरजेंसी है, क्योंकि ये जल्दी ठीक हो सकती है। तो इसके लिए न्यूरोफिजिशियन को, या अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है साथ में, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, सो नहीं पा रहा है, थोड़ा कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, या उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, कई बार उन्हें ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या बात कर रहा हूँ, या उनकी पुरानी मेमोरीज बहुत ठीक हैं लेकिन अभी वाली मेमोरीज जो हैं वो एकदम गायब जानी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक्यूट है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बेहतर है, क्योंकि वो डायग्नोज कर सकता है कि क्या फिजिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर असर हुआ है। जितना जल्दी ठीक होगा, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डिमेंशियाज, यानी कोई कारण रहा फिजिकल जिसकी वजह से ब्रेन में डैमेज हुई, उसको ठीक करेंगे तो चांसेस है कि ब्रेन डैमेज धीरे धीरे बेटर हो जाए। लेकिन अगर बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली वीक्स और मंथ्स में ये प्रोसेस होना शुरू हो रहा है तो परिवार वाले पहले तो समझ नहीं पाते, और क्योंकि बहुत इम्परसेप्टिबली चेंज हो रहा है, और उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा ये तो एज रिलेटेड है, चलो 70 साल की उम्र में कुछ तो फ़र्क होगा ही। लेकिन ये भी बात समझने की कि अगर व्यक्ति जब तक जी रहा है तब तब तक एक अच्छा जीवन जिए, तो उसके लिए और परिवार वालों के लिए, दोनों के लिए सहूलियत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए भी तो परिवार वालों की ज़रूरत है ना। तो उसमें जितना वो उसकी जल्दी मदद करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करेंगे, और उसके लिए आज के समय में कुछ खास तरह की, डिपेंडिंग ऑन, कोई अगर डेफिशिएंसीज हैं, कई बार कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से या डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो अगर उस चीज़ को ठीक करेंगे तो वो चीज़ को बेटर कर पाएंगे, और उसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म डैमेज जो है, जो कि स्पीड से बढ़ेगी, वो कम की जा सकती है।
ओके, और बाकी बीमारियों के साथ भी, सपोज बाकी भी बीमारियां चल रही हैं, उनकी भी दवाइयां चल रही हैं, तो तब भी अगर इनकी भी हम दवाई देते हैं तो इट विल नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, कोई साथ चल सकती
है। ये डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा कि बाकी क्या दवाइयां चल रही हैं, उसकी वजह से कितना ब्रेन के ऊपर डैमेज हुआ है, और जो अभी डैमेज हुई है उसके लिए कोई और दवाई की ज़रूरत है या नहीं, और वो बाकियों के साथ कैसे चल सकती हैं। तो मैं ये समझूंगा कि इसको जल्द से जल्द पहचानना फैमिली की, क्योंकि ये व्यक्ति खुद तो नहीं पहचान पाएंगे, तो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और जल्द से जल्द ले जाना। अनफॉर्चुनेटली आज के संदर्भ में हम ये भी देख रहे हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जिनमें कि फैमिली मेंबर्स वृद्ध व्यक्ति के साथ नहीं हैं, और कई बार एल्डरली कपल इकट्ठे रहते हैं, एक व्यक्ति नहीं रहा किसी कारण से, डेथ की वजह से, और दूसरे जो परिवार के मेंबर रह रहे हैं, या तो वो दूसरे शहर में रह रहे हैं, या एक शहर में भी घर उनसे दूर रह रहे हैं, या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो ये सिम्टम्स कई बार बिल्कुल ही नहीं पता लग पाते। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट रेगुलर रखे रहना और पता रखते रहना कि उनकी पर्सनैलिटी में तो कोई चेंज नहीं आ गया, या अपनी वो कहीं पैसे तो नहीं भूल जाते हैं, कहीं पासबुक तो नहीं भूल जाते हैं, या उनके सिग्नेचर जो हैं वही बदलते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सबसे पहले साइंस हो सकते हैं, तो इनको पहचान पाना और फिर उसके बाद मदद करना परिवार के लिए ज़रूरी हो जाता
है। शिवानी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम सब डिज़र्व करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि आज के वक्त में हम अपनी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी ही भागम भागी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम ये मानते हैं कि चलो ये एज आई तो ये सब होगा ही होगा, यू नो लाइक हो ही रहा है, अगर मेमोरी लॉस है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है। लेकिन टू टेल माई सेल्फ, यू नो कि अब खुद मुझे अपने आप को तैयार करना कि मेरा अगर पेरेंट है या कोई बुजुर्ग है, वो डिज़र्व करते हैं, और आज हमारे पास अवेलेबल हैं चीज़ें, तो वो हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी मुझे लगता है इतनी भागम भाग में है कि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम उनके इस आस्पेक्ट को एक्चुअली उसकी केयर कर पाए।
सो इम्पोर्टेंट नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल लाइन कि जब तक जीना है, यू नो हमें ये लगता है कि हाँ ये एज है तो अब धीरे धीरे इसे डिक्लाइन, यू नो जिसको हम कहेंगे फिजिकल हेल्थ का डिक्लाइन तो होता ही होता है, लेकिन वो जीना, यू नो लेट्स से उस फेज में, सपोज आई स्टार्ट लूजिंग माई मेमोरी एंड उस फेज में मुझे 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल आई एम अलाइव, सो हाउ विल बी दैट क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। एंड फिर वो सिर्फ मुझ पर नहीं असर करने वाला ना, चैलेंजेस ज़्यादा तो फैमिली के ऊपर आएंगे उस टाइम उनको संभालने के लिए, तो क्यों ना हम उसको ध्यान रखें कि इट डजेंट मैटर कि क्या एज है, चाहे वो 60 है, 80 है या उससे भी ज़्यादा है, बट वी नीड टू सी कि वो क्योरेबल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने लिए आज से, क्यों इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है कि आज हमने भी अपनी मेमोरी को किन किन चीज़ों से क्लटर कर लिया, जैसे कहा मल्टीटास्किंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग मल्टीटास्किंग नाउ, बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन पावर, जस्ट दी अदर डे आई मेट अ 16-year-old गर्ल, शी सेड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, एग्जाम है 1 महीने बाद तो क्या करना है, आई सेड कहाँ ध्यान जाएगा, फ़ोन पड़ा है साइड पे। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब हम पढ़ते थे ना साथ में फ़ोन पड़ा था, ना साथ में कंप्यूटर पड़ा था, और ना सामने टीवी पर कुछ आना था, क्योंकि आना था तो रात को 9 बजे आना था। अब जब अवेलेबिलिटी ही इतनी होगी तो ऑटोमेटिकली पढ़ना इज नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर एवरीबडी। या जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा कि कार्टून में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन पढ़ना तो उतना इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है, तो जब साथ में और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी होंगी तो नेचुरली आप हर 10 मिनट बाद देखोगे कि व्हाट्सएप किसका आया, फेसबुक पे किसने अपलोड कुछ किया, अच्छा कुछ नहीं तो 10 मिनट बाद 5 मिनट के लिए टीवी ऑन कर लेते हैं। तो ये हमें एज अ फैमिली एंड स्टूडेंट को खुद, अगर वो अपनी, क्योंकि आज हर स्टूडेंट सिर्फ कह रहा है कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, हर पेरेंट और हर टीचर उनको कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करो, वो कहते हैं नहीं हो रहा, वो कहते हैं करो, एंड टॉपिक वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम इतना भी करके देखें कि हमें टेक्नोलॉजी को अपने आसपास नहीं रखना है व्हेन वी आर टू स्टडी, कि ये दो घंटे मैंने ना फ़ोन को हाथ लगाना है ना कंप्यूटर को हाथ, लेट मी सी ना व्हाट हैपेंस। एंड कोई भी चीज़ एकदम से नहीं ऐसे बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी तो सही। जैसे बताया मेमोरी पावर, यूज़ नहीं कर रहे तो घट रही है, अब हम यूज़ करना शुरू करें। लेट्स मेक इट अ पॉइंट टू रिमेंबर फोन नंबर्स। अभी डॉक्टर अवधेश ने कहा 3-4 फोन नंबर्स, आई वॉज थिंकिंग वेदर आई रिमेंबर 3-4 फोन नंबर्स, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो सारे अवेलेबल हैं। तो इफ़ वी कॉन्शियसली स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स कि मुझे ये करना है, तो आई थिंक हमारी मेमोरी भी बढ़ेगी, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। और अगर हम डेली मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करते हैं, हम अपने माइंड को क्लीन रखते हैं। इतना accumulated, यहाँ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, information यहाँ से और information हमारी अपनी लाइफ की जिसको हम डिलीट नहीं करना चाहते। मैं नहीं भूल सकती, वो बात भी नहीं भूल सकती, उसने जो कहा वो भी नहीं भूल सकती। तो इतना ओवरलोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ माई पास्ट, तो वो भी शायद एक बहुत बड़ा बोझ यहाँ पर बनता है, जिसको हम कहेंगे कि lifestyle, कि ये हमारी आज lifestyle है जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रह्मा कुमारीज में दादीज को देखते हैं, या हम सब देखते हैं संतों को, महात्माओं को, उनकी एज कितनी है, 80, 85, 90, बट लुक एट देयर अलर्टनेस, देयर शार्पनेस, देयर माइंड, बिकॉज दे यूज्ड द पावर ऑफ द माइंड इन अ वेरी डिफरेंट वे देयर होल लाइफ। तो हम सब भी वो कर सकते हैं। अगर हम डेली सिर्फ अपने माइंड को डीक्लटर करें, क्लीन करें, तो वो लाइट रहेगा, जितना लाइट रहेगा शायद पावरफुल उतना रहेगा, उतना थकेगा नहीं सारा दिन, तो ऑब्वियसली उसकी कंसंट्रेशन पावर तो बढ़ती जाएगी। दैट्स वाइज जितनी ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स अभी आई हैं, उसी लाइफस्टाइल में अगर स्पिरिचुअलिटी को हम डालते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें उसको बैलेंस करने में और अपने आप को हेल्दी रखने में, इमोशनली भी और फिजिकली, डेफिनेटली प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। एंड दैट्स वाई वी से स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन फॉर हेल्थ, इसीलिए उसको हेल्थ के साथ इतना कनेक्ट किया जाता है। इट्स नॉट जस्ट रिलीजन, इट्स हेल्थ रिलेटेड। तो एटलीस्ट अपने हेल्थ के लिए सही, वी नीड टू इंट्रोड्यूस इट इनटू आवर लाइफस्टाइल।
यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ के लिए खासतौर पे स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, चाहे वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि डीप ब्रीदिंग करके आप अपनी ब्रेन की एक्चुअली ऑक्सीजनेशन को बढ़ाते हैं, उसी के साथ साथ आप रिलैक्स होते हैं तो जो आपके ब्रेन की इनकोडिंग है वो बेटर होती है, या आप जब फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं और उस समय में स्पेशली अगर आप नेचर के साथ होते हैं तो उस समय में आपकी जो इनपुट्स आती है वो उस समय के लिए आती है, पास्ट एंड फ्यूचर का जो है वो उसमें आपका ध्यान नहीं आता। सिमिलरली इफ़ यू स्टार्ट लिविंग इन द हेयर एंड नाउ, जिसमें कि आप पहले की चीज़ों का ओवरबर्डन नहीं करते, फ्यूचर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते, तो अभी के लिए आपका माइंड जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो उसकी एनकोडिंग बेटर होती है। अगर आप ज़्यादा टेंस नहीं होते हैं, अगर आप हर चीज़ से इमोशनली हताश नहीं होते हैं, तो अगेन एनकोडिंग बेटर होती है। जो पुराने रिश्ते हैं उन रिश्तों की महक को अगर आप महसूस करते हैं तो आपके दूसरे लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनी रहती है, उससे भी मेंटली स्टिमुलेशन होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि बिल्कुल यूज़ ना करना या ओवर यूज़ करना, दोनों ठीक नहीं है। उसका जो बैलेंस है कि मैं अपने आप को एक्टिव रखूँ फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, और साथ ही साथ मैं चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव से देख पाऊँ, ज़्यादा परेशान ना हो पाऊँ, और मेरा एक पर्पज़ ऑफ लाइफ हो जिसकी वजह से मैं जी भी पा रहा हूँ अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो वो भी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। वी नो नाउ कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेन के लिए भी अच्छे हैं। अगर आप खुश रहते हैं तो अगेन कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं जो कि ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बेटर हैं। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं जिसमें कि वेजिटेरियन फूड, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स फुल ऑफ vitamins, वो भी अगेन ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप एडिक्वेट स्लीप लेते हैं और सही समय पर सोकर सही समय पर उठते हैं, अगेन ब्रेन की एक्टिविटीज़ बेटर होती हैं। अगर हम मेडिटेट करते तो उससे जो ब्रेन की वेव्स हैं वो ज़्यादा बेटर हो जाती हैं, ब्रेन के अलग अलग जो हिस्से हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं, पावर है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन, नाउ देयर इज एविडेंस टू शो कि मेडिटेशन करने से आपके अटेंशन, कंसंट्रेशन, एनकोडिंग ऑफ मेमोरी और फिर बाद में याद आना वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ब्रेन को मेडिटेशन के वक्त में ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिशन और ज़्यादा ऑक्सीजनेशन होती है, उसकी वजह से भी वो उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। सो अगेन इट हैज़ बीन फाउंड कि अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, स्पेशली 6 मंथ्स के लिए, तो ब्रेन के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जो कि MRI स्कैन्स पे, fMRI जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर देखे जा सकते हैं। प्लस एक पर्पज़ ऑफ लाइफ, और उस पर्पज़ ऑफ लाइफ में सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर वो भी इस्तेमाल आप करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, अगेन इट हेल्प्स यू इन रिटार्डिंग द एजिंग। कई बार जो पुरानी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे म्यूज़िकल ट्यून्स वर्ड्स के साथ, वो बहुत फ़ायदा देती हैं, या जो पहले आपने कुछ पढ़ा है उसको बीच बीच में याद करना। आज के समय में कई तरह की गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके आसपास अध्यात्म से रिलेटेड कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नई तरह के लोगों से उसके साथ जुड़ सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अपने आप भी बिजी रह सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स विच कैन हेल्प इन रिटार्डिंग, डिलेइंग एंड इम्प्रूविंग डिमेंशिया।
एंड डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि म्यूजिक जो है दैट कैन ऑल्सो बी अ बिग थेरेपी, खासकर इस उम्र में अगर हम करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत प्यारी मेमोरीज जो हैं, जो अच्छी मेमोरीज हैं, वो उस संगीत के साथ भी जुड़ी होती हैं। डॉक्टर शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच आज की पूरी बात।
टू इंक्रीज आवर मेमोरी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिमेंशिया इन द लेटर इयर्स, फर्स्ट स्टेज इज टू गिव अटेंशन, सेकंड इज कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। दिस इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। If it is repeated many times or put into action, it is a mid-term memory. Long-term memory is related to our identity and things close to us. Overload of information and multitasking does not allow proper registration. Excessive anxiety, depression, certain vitamin deficiencies, improper diet, physical illnesses like blood pressure, diabetes, hypothyroidism, and lack of exercise can also be the cause of improper coding of the brain. Overuse of technology to register information affects our memory coding. To increase concentration on work and studies, keep away gadgets and other distractions. Cleansing of past painful memories and keeping the mind light and powerful with meditation helps to increase memory power.